आज हमारे सामने पूज्य गुरुदेव का मार्च 1984 का एक ऐसा संदेश है जो एक बड़ी योजना की घोषणा भी है और उस योजना को सफल बनाने वालों के लिए एक आईना भी।
जी,
ये परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयवों से अपेक्षा का वो हिस्सा है जो उन्होंने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को दिया था।
बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सामान्य भाषण नहीं था।
हाँ,
ये उस दौर में दिया गया निर्देश था जब पूज्य गुरुदेव एक बहुत बड़े आध्यात्मिक प्रयोग मतलब सूक्ष्मीकरण के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इसमें एक खास अर्जेंसी है, एक खास पुकार है।
इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार और कितने आत्मविश्वास से भरी है। ये विराट योजना पूरी होकर रहेगी।
हाँ,
मतलब ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे नतीजा तो पहले से ही तय है।
बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। पूज्य गुरुदेव यहाँ सुनने वाले का ध्यान, मतलब जो चिंता है ना कि क्या होगा, वहां से हटाकर तैयारी पर ला रहे हैं।
अच्छा,
वो कह रहे हैं कि भविष्य की चिंता मत करो, ये तो होकर रहेगा। अब सवाल ये है कि इस होने में तुम्हारी भूमिका क्या होगी, और यहीं से वो अग्नि परीक्षा की वेला की बात करते हैं।
अग्नि परीक्षा की वेला, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका आज के समय में क्या मतलब निकाला जा सकता है?
भारी तो है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा दौर है जहां सिर्फ बातें और इरादे काम नहीं आएंगे, बल्कि आपके चरित्र की असली परख होगी। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है,
वही बात है।
वैसे ही व्यक्ति की असलियत और उसकी क्षमता वो मुश्किल समय में ही सामने आती है। गुरुदेव कह रहे थे कि अब वो समय आ गया है।
तो अगर ये एक अग्नि परीक्षा है तो सवाल ये उठता है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कौन से गुण चाहिए, और मुझे लगता है इसका जवाब अगली ही पंक्ति में है।
जी, जहां पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं।
हाँ बिल्कुल,
एकदम सही पकड़ा, और फिर वो उस ऊंचे व्यक्तित्व की परिभाषा भी देते हैं।
हाँ, वो बताते भी हैं कि ये ऊंचाई क्या है।
जी, ये ऊंचाई किसी पद, पैसे या प्रसिद्धि से नहीं आती, ये चार गुणों से आती है: श्रम, मनोयोग, त्याग और निरअहंकारिता।
मतलब मेहनत, पूरा ध्यान लगाकर काम करना, स्वार्थ छोड़ना और अहंकार से मुक्त होना।
हाँ,
ये दिलचस्प है। अक्सर हम त्याग और निरहंकारिता को मतलब आध्यात्मिक गुण मानते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने यहाँ श्रम यानी मेहनत और मनोयोग यानी फोकस को भी उतना ही महत्व दिया है।
निश्चित रूप से, और यही तो उनका क्रांतिकारी संदेश है।
अच्छा,
उनके लिए आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक विज्ञान है। वो कह रहे हैं कि आप चाहे जो भी काम करें, अगर उसे पूरी मेहनत, लगन, त्याग और बिना अहंकार के करते हैं, तो वही आपकी साधना है।
मतलब ऊंचे काम के लिए ऊंचा चरित्र चाहिए,
और चरित्र इन्हीं गुणों से बनता है। जी,
मुझे ये बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि पूज्य गुरुदेव कार्यकर्ताओं से सिर्फ काम नहीं मांग रहे, बल्कि एक पूरा चारित्रिक रूपांतरण मांग रहे हैं।
हाँ,
वो कहते हैं आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, ये एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। मतलब ये एक लीडर का अपनी टीम पर भरोसे की पराकाष्ठा है।
और इसी भरोसे के साथ एक चेतावनी भी छिपी है। अंत में वे कहते हैं कि इस विषम वेला में कोई पिछड़ ना जाए,
ताकि बाद में पछताना ना पड़े।
जी, ये हर व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी पर जोर देता है। ये सिर्फ एक टीम का लक्ष्य नहीं है,
ये एक व्यक्तिगत यात्रा भी है।
हाँ बिल्कुल, पिछड़ गए तो दोष किसी और का नहीं, अपना होगा।
तो मतलब पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि किसी भी महान लक्ष्य की सफलता वो सिर्फ अच्छी योजनाओं या संसाधनों पर नहीं, बल्कि उस लक्ष्य के लिए काम करने वाले लोगों के चरित्र की ऊंचाई पर निर्भर करती है।
हाँ, और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना?
बिल्कुल।
पूज्य गुरुदेव का संदेश ये है कि महान क्रांतियां बाहर के दुनिया में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर शुरू होती हैं। योजनाएं तो सिर्फ नक्शे हैं, असली ताकत तो उस इंसान में है। और ये एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है। हम अक्सर अपने लक्ष्यों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में बहुत समय लगाते हैं, पर क्या हम खुद को उन योजनाओं के काबिल बनाने पर भी उतना ही ध्यान देते हैं?